Awakening to a new way of living.
ओम शांति दोस्तों, किसी ने बहुत सुंदर कहा है, देयर इज नो परफेक्ट लाइफ बट वी कैन फिल इट विथ परफेक्ट मोमेंट्स। बिटवीन द स्टिमुलस एंड अवर रेस्पॉन्स देयर इज ऑलवेज अ स्पेस, एंड दैट स्पेस इज अवर कॉन्शियस डिसीजन दैट अलाउज अस द केपेबिलिटी टू चूज व्हाट वी वांट इन आवर लाइफ। इट इज अवर ओन कॉन्शियस डिसीजन, इट इज अवर ओन वे ऑफ चूजिंग अवर ओन इनर फ्रीडम दैट कम्स विद अवर ओन बिलीफ सिस्टम। ये हमारी मान्यताओं के आधार पे, हमारी सोच के आधार पे आता है। कभी भी जीवन में कोई परेशानी आती है, दैट पॉज मेक्स अस एनेबल्स अस टू डिसाइड व्हाट वी वांट इन अवर लाइफ। हम अपनी लाइफ को, अपनी जीवन को किस दिशा निर्देश की तरफ ले जाना चाहते हैं, किस तरफ हम उसको ले जाना चाहते हैं, ये हमारी अपनी कॉन्शियस चॉइस है। Either we choose to experience the pain, either we choose to experience the suffering, or we can be free by our own mind. Either we want to be just treated, or we want ourselves to be healed. My dear friends, today are the times to just not know, but to know how we are marvels of change. अपने आप को परिवर्तन करने की शक्ति, अपने आप को एक नया रूप देने की शक्ति, वह कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अपने अंदर है। प्रॉब्लम्स आर ऑलवेज अ पार्ट ऑफ अवर लाइफ, लेकिन हर परेशानी अपने साथ सॉल्यूशन भी लेकर आती है। हर बीमारी अपने साथ कहीं ना कहीं एक छुपा हुआ इलाज भी लेकर आती है, और हम कई बारी अपने इलाज को बाहर ही ढूंढते रहते हैं। हम कई बारी सोचते हैं कि केवल दवाइयां ही हमारे शरीर को ठीक करेंगी, और जरूरी भी है, उसको हम कहते हैं वो ट्रीटमेंट है, लेकिन ट्रीटमेंट को हीलिंग में ट्रांसफॉर्म करना वो हमारी अपनी कॉन्शियस चॉइस होती है। जब हम अपने मन की मनोशक्ति को उस ट्रीटमेंट में डालते हैं, अपने बिलीफ सिस्टम को उस ट्रीटमेंट से एम्पावर करते हैं, तो हम अपने आप को केवल ट्रीट नहीं करते, अपने आप को कंप्लीटली हील कर लेते हैं। आज हजारों ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो लोग अपनी कठिन से कठिन परिस्थितियां और बीमारियों को अपनी मनोशक्ति के द्वारा हील कर रहे हैं। आज के इस परिपेक्ष में मुझे अपने जीवन की एक बहुत सुंदर कहानी ध्यान में आती है। ये 2003 20 मार्च का वो दिन था जब मैं अपने हॉस्पिटल से, ऑपरेशन थिएटर से वापस आया, और शाम को आकर मैं घर पर अपना भोजन करके लेटा ही हुआ था। कुछ महीनों से शरीर पे कमजोरी महसूस होती थी और वजन भी कम हो रहा था, लेकिन भोजन के बाद सडनली मुझे सीजर्स हुए और मुझे एकदम हॉस्पिटल में रश किया गया, आईसीयू में एडमिट किया गया, क्योंकि वो सीजर्स कंट्रोल नहीं हो रहे थे, जिसको हम कहते हैं दौरा पड़ रहा था। जैसे तैसे दवाई देकर वो दौरे कंट्रोल किए गए, और अगले दिन जब मेरे ब्रेन स्कैन्स हुए, पहले सीटी स्कैन हुआ और उसके बाद एमआरआई हुआ, और एमआरआई में देखा गया कि मेरे राइट साइड ब्रेन में, पैराइटल लोब में बहुत बड़े बड़े मासेस थे, बहुत बड़े बड़े मासेस थे। तो ये एक उस समय किसी भी परिवार के लिए, एक डॉक्टर जो कि कार्डियोलॉजी की पढ़ाई पढ़ रहा था, उसके लिए चिंता का विषय था। तो मैंने सोचा कि ये क्या हुआ है, और जब उसको इन्वेस्टिगेट किया गया, उसके लिए अलग अलग प्रकार की जांचें की गई, तो पाया गया कि मैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस से सफर कर रहा था, जो किसी मरीज से शायद मैंने कभी ना कभी एक्वायर की होगी, और वो बहुत ही रेयर डिजीज थी, उसका कोई प्राइमरी डिजीज, प्राइमरी कारण मुझे नहीं मिला था। उस समय केवल दुनिया में 19 दवाइयां इसकी अवेलेबल थी, और जब मेरी टेस्टिंग की गई तो उनमें से 18 दवाइयों के लिए मैं रेजिस्टेंट पाया गया। केवल एक टॉक्सिक इंजेक्शन था जो मुझे रोज अपने हाथ पर लगवाना पड़ता था, एक एक मिलीमीटर के गैप पर वो आईवी इंजेक्शन रोज मुझे लगता था, और करीब मुझे याद है कि 12 से 14 टैबलेट्स मैं रोज खाता था। उस समय दर्द जरूर होता था, लेकिन दुख की महसूसता मैंने अपने जीवन में अपने आप को कभी भी नहीं होने दी। एक साल बीता, धीरे धीरे मैं दवाइयां लेता गया, थोड़ा सा असर उस लेजन पर जरूर पड़ा, उसका वॉल्यूम कम हुआ, लेकिन अल्टीमेटली वो ठीक नहीं हो रहा था, और उसी बीमारी के दौरान ही मैंने एक किताब भी लिखी और अपने कार्डियोलॉजी का एग्जाम्स भी मैंने दिए। 2005 में जब मैंने अपनी कार्डियोलॉजी की परीक्षा को पास किया, मुझे दिन अभी भी ध्यान है, अल्टीमेटली ये डिसीजन हुआ कि मेरी सर्जरी होनी चाहिए। और मेरी ब्रेन की सर्जरी, काफ़ी बड़ी सर्जरी, 6 घंटा वो सर्जरी चली, वो ब्रेन की सर्जरी की गई और जो मांस था उसको निकाला गया। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और मैं सोच रहा था कि अब तो मैं ठीक हो गया हूँ। मैं दवाइयाँ फिर भी खाता था क्योंकि उस बीमारी के बाद फिर भी 1 से 1.5 साल दवाइयाँ कम से कम कंटिन्यू करनी चाहिए। और मैंने अपनी एक्टिविटीज़ को धीरे धीरे रिज्यूम भी किया, खुश रहता था, एंजॉय करता था, रोज़ मेडिटेशन करना और बहुत अपने लाइफ में प्रैक्टिकल रहना, कार्डियोलॉजी की प्रैक्टिस भी प्रॉपर तरीके से करना, परहेज करना। 6 महीने बीते और जनवरी 2006 मेरे ब्रेन स्कैन्स दोबारा किए गए। जब ब्रेन स्कैन्स दोबारा किए गए तो जो मांस निकाला था वो तो ठीक हो चुका था, लेकिन मेरे ब्रेन का एक और पार्ट जिसको हम सेरिबेलम के नाम से जानते हैं, उस सेरिबेलम में एक और मांस आ गया था। जब डॉक्टर से हमने कंसल्ट किया तो उन्होंने कहा इसका इलाज ऑपरेशन के द्वारा संभव नहीं है। अब मैं इंजेक्शंस भी लगा रहा था, टैबलेट्स इतने टाइम से ले रहा था, तो मेरे पास क्या ऑप्शन था? मैंने सोचा मैं दवाइयां तो बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल ले रहा हूं, विश्व के बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर्स ने मुझे सबसे अच्छी दवाइयां दी हैं और उन दवाइयों को मैं लेता रहा। पर मैंने सोचा कि रूटीन अपने जीवन को अगर मैं इसी तरीके से चलने दूंगा तो ये बीमारी ठीक नहीं होगी। मैं मेडिटेशन तो करता हूं लेकिन उस मेडिटेशन का प्रयोग अपने ऊपर करना, उसका समय अब प्रॉपर तरीके से आ चुका था। अपने आप मन में अपने एक दृढ़ संकल्प किया और एक समय निश्चित किया, रोज मॉर्निंग में उठकर फोकस्ड मेडिटेशन मुझे अपने ब्रेन के लिए स्पेशली करनी है। रोज रात को मैं स्पेशली एक ग्लास में पानी रखता मेडिटेशन रूम में और उसको चार्ज करता अपने संकल्पों के द्वारा कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। मेरा एक एक संकल्प, मेरा एक एक थॉट मेरे ब्रेन के अंदर से जो निकल रहा है मेरे शरीर के एक एक सेल को बिल्कुल हील कर रहा है, मेरे ब्रेन में कोई भी बीमारी नहीं है। और परमात्मा से वो एनर्जी मैं रोज मॉर्निंग में, जिसको हम अमृत वेला कहते हैं, 2 से 5 का समय, उस समय उठकर वो एनर्जी में लेता था और उसको बहुत पावरफुल तरंगे, बहुत पावरफुल, जैसे सूर्य की तरह पावरफुल किरणें होती हैं, वो अपने ब्रेन को मैं सकाश के रूप में देता था। ये प्रैक्टिस मैंने बहुत बिलीफ के साथ 1 साल लगातार की। 1 साल करने के बाद मैंने सोचा कि अब ब्रेन के स्कैन्स दोबारा कराने चाहिए। तो जनवरी 2006 में जब पहले स्कैन्स हुए थे, उसके बाद अप्रैल 2007 में मैंने अपने ब्रेन के स्कैन्स को दोबारा रिपीट कराया। और जब ब्रेन के स्कैन्स दोबारा रिपीट किए गए तो आपको जानकर अचंभा होगा, हैरानी होगी, और जैसा मुझे भी बहुत ही खुशी हुई कि जो मेरा ब्रेन का वो मास था वो कंप्लीटली डिसअपियर हो चुका था। और मुझे उस समय रियलाइज हुआ कि भले मैं शरीर का डॉक्टर हूं, भले मैं हार्ट की बीमारियों का इलाज करता हूं, भले हम मेडिकल साइंस में कितने भी एडवांस हो चुके हैं, लेकिन कुछ बीमारियों का इलाज हमारी मेडिकल साइंस के पास नहीं है, कुछ बीमारियों का इलाज हमारे स्वयं के पास है, हमारे बिलीफ सिस्टम के पास है। और जब मैंने इसकी साइंस में जाना आरंभ किया, जिसके बारे में आज मैं आपको बताना चाहूंगा, व्हाट इज द साइंस ऑफ हीलिंग, ये मिरेकल्स जो हैं, ये मार्वल्स जो हैं, ये कौन क्रिएट करता है? इज इट क्रिएटेड बाय पीपल आउटसाइड और इज इट क्रिएटेड बाय अवर ओन सेल्फ? ये हमारे बिलीफ सिस्टम, हमारी मान्यताएं, हमारी धारणाएं, हमारे थॉट प्रोसेस, जब हम उसको एम्पावर करते हैं कि हम अपने आप को कठिन से कठिन बीमारियों में भी कंप्लीटली पार्शली हील कर सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है? आज इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमारे शरीर में 2 प्रणालियां बहुत सुंदर रूप से कार्य सदा करती रहती है। 2 प्रोसेसेस सडनली हमारी लाइफ में होते रहते हैं जो अनकॉन्शियसली चलते रहते हैं। उसमें से एक प्रोसेस है प्रोसेस ऑफ न्यूरोजेनेसिस। न्यूरोजेनेसिस अर्थात हमारे ब्रेन में सेल्स कंटिन्यूअसली पाथवेज बनते रहते हैं। जो हम सोचते हैं, जो हम विचार करते हैं, वो थॉट्स हमारे ब्रेन में जाते हैं और वो ब्रेन में थॉट्स जाकर हमारे साइनेप्टिक कनेक्शंस, यानी हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स को लिंक करते हैं। इसी प्रकार जो दूसरा प्रोसेस हमारे शरीर में लगातार चलता रहता है वो है प्रोसेस ऑफ कोहेरेंसी। कोहेरेंसी अर्थात लिंकिंग, जिसको हम कहते हैं प्रॉपर कम्युनिकेशन, समन्वयता। अगर हमारे जीवन में समन्वयता नहीं है, हमारे बॉडी के अंदर भी समन्वयता नहीं है, तो हम बीमारी के ऊपर कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एक नॉर्मल व्यक्ति में हम देखते हैं कि क्या होता है। यदि एक नॉर्मल व्यक्ति को बीमारी आती है, उसका थॉट प्रोसेस कैसा चलेगा? उसका थॉट प्रोसेस सदा नेगेटिव रहेगा, वो डर जाता है। ये स्वाभाविक रूप से एक फीलिंग आती है। एक मानव मन के अंदर जब डर की फीलिंग जाती है, तो उसके जो विचार हैं, उसके जो स्टिमुलस हैं, उसके ब्रेन के अंदर जो लगातार नेगेटिव विचार जाते हैं, वो पूरी बॉडी को नेगेटिव सिग्नल्स देते हैं, डर की फीलिंग देते हैं। अब आप सोचिए कि एक मानव का मन जब एक दिन में 50,000 से 60,000 विचार जनरेट करता है, और एक ऐसी परिस्थिति, एक ऐसी बीमारी किसी व्यक्ति के जीवन में आ जाती है जो उसका पूरा थॉट प्रोसेस को कैप्चर कर लेती है, लगातार बॉडी सिग्नल देती है पूरे शरीर को कि आप बीमार हैं, आप बीमार हैं। और ना केवल हम इस बीमारी का चिंतन स्वयं अपने मन में करते हैं, वो नेगेटिव थॉट्स अपने मन में लाते हैं, वो सिग्नल पूरी बॉडी में ट्रांसमिट होते हैं, और यही सिग्नल हम बाहर भी रेडिएट करते हैं, लोगों से बातें करते हैं, उनको बताते हैं, उनका भी एनर्जी, उनके भी संकल्प हमारे ब्रेन को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो न्यूरोजेनेसिस का प्रोसेस कैसा होगा? नेगेटिव प्रोसेस होगा, नेगेटिव लिंकिंग होगी। फियर के न्यूरॉन्स जो पाथवेज हैं, वो नेगेटिव न्यूरॉन्स बन जाएंगे। यानी कभी भी हम उसके बारे में सोचेंगे तो हमको डर लगेगा, हमको चिंता होगी। हमारा केमिकल ब्रेन, हमारा लिम्बिक सिस्टम जो है, हमारे ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं। एक रैशनल थिंकिंग ब्रेन जो हमारा CEO है, यानी जो हमारे ब्रेन, हमारी बॉडी का गवर्निंग सेंटर है। दूसरा हमारा केमिकल ब्रेन है या लिम्बिक सिस्टम है। जब हम डर की सिग्नल्स अपने लिम्बिक ब्रेन को देते हैं, अपने केमिकल ब्रेन को देते हैं, तो वो समझ जाता है कि ये व्यक्ति डरा हुआ है, और वो डर के केमिकल्स पूरे बॉडी में रिलीज कर देता है, और वही सिग्नल्स हमारे पास वापस आते हैं और हमारे ब्रेन में नेगेटिव पाथवेज बनाते हैं, नेगेटिव लिंकिंग करते हैं, और हमारी लाइफ एक इनकोहेरेंट लाइफ हो जाती है, रैपिड फायरिंग लाइफ हो जाती है। यानी डर और चिंता हमारी लाइफ का एक नेचुरल वे बन जाता है। क्या होगा ऐसे समय पर? इनकोहेरेंसी के कारण हम लोग फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। दोस्तों आपने देखा है, जब भी हम डर जाते हैं तो हमको पसीने आते हैं, हम बहुत घबरा जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त हम अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर रहे होते, हमारे संकल्प, हमारा डर, हमारी चिंता हमारी लाइफ को कंट्रोल कर रहा होता है। स्ट्रेस हॉर्मोन्स, कॉर्टिसोल, ये सब सिग्निफिकेंट लेवल में बढ़ते हैं, और हम अपनी लाइफ को इमरजेंसी मोड यानी ऑटो पायलट मोड में लीड करते हैं। तो ना न्यूरोजेनेसिस का प्रोसेस प्रॉपर होता है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव विचार, नेगेटिव बिहेवियर, नेगेटिव इमोशंस, वही नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव फीलिंग, नेगेटिव स्टिमुलस टू द होल बॉडी एंड द ब्रेन एंड नेगेटिव सिनेप्टिक पाथवेज, नेगेटिव थिंकिंग हमारे ब्रेन में लिंक कर जाती है। हमारे फियर के पाथवेज स्ट्रांग होते चले जाते हैं, हमारे डर के पाथवेज स्ट्रांग होते चले जाते हैं। इसी प्रकार इनकोहेरेंसी होने के कारण हर छोटी छोटी बात पर हमको डर लगेगा, हम चिंता जनरेट करेंगे, हमको घबराहट होती है। तो दोस्तों, हमारा पूरी बॉडी जो है वो ऑटो पायलट यानी इमरजेंसी मोड में कार्य कर रही है। आज अगर हम इस बात को देखें तो 99% ऑफ पीपल जब भी उनके पास बीमारी आती है, तो वो अपनी लाइफ को इमरजेंसी मोड यानी डर के मोड में रन करते हैं। और दोस्तों, जब हमारा मन बार बार डर और चिंता के संकल्प जनरेट करता है, बार बार जब हमारे मन के अंदर नेगेटिव संकल्प जनरेट होते हैं, भय के संकल्प जनरेट होते हैं, अनसर्टेनिटी के बारे में जनरेट होते हैं, तो क्या फीलिंग आएगी? पूरी बॉडी के सेल्स जो हैं वो एसिंक्रोनस या डिससिंक्रोनस हो जाते हैं। यानी हर सेल अपने अपने हिसाब से कार्य करता है, क्योंकि सेंट्रल सिस्टम, हमारा कंट्रोलिंग सिस्टम, हमारे मन के संकल्प संयम में नहीं है। मैं आप ही लोगों को इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से समझाना चाहता हूं। अगर आप देखें कि इसको हम एक क्लास के रूप से ऑर्गेनाइज करें, एक क्लास जहां पर करीब 100 बच्चे बैठे हुए हैं, लेकिन जब 100 बच्चे बैठे हुए हैं, वो आपस में खेल रहे हैं, बात कर रहे हैं, कभी लड़ रहे हैं, कभी इधर उधर की बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि टीचर नहीं है या प्रिंसिपल नहीं है। इसी तरह बड़े स्कूल की बात करें, जब स्कूल में प्रिंसिपल नहीं होता, सब कुछ डिसऑर्गेनाइज्ड होता है, टीचर्स नहीं होते, सब कुछ डिसऑर्गेनाइज्ड होता है, सब ऑटो पायलट मोड में यानी ऑटो मोड में कार्य कर रहे होते हैं। लेकिन अगर उनमें सिंक्रनी लानी हो, अगर उनको आपस में लिंक करना हो, समन्वयता उनके अंदर लानी हो, तो किस चीज की आवश्यकता होती है? एक सेंट्रल कंट्रोल की आवश्यकता होती है, एक टीचर की आवश्यकता होती है। दोस्तों, हमारी साइंस ऑफ बिलीफ भी यही कहती है, हमारी साइंस ऑफ हीलिंग भी यही कहती है। आज हम लोग जब केवल दवाइयों पर विश्वास करते हैं, हम लोग केवल मेडिकल साइंस पर विश्वास करते हैं, लेकिन कई बारी कुछ ऐसी चीजें हमारी लाइफ में होती हैं जो हम मेडिकल साइंस उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती है। वो कहती है ये कैसे हुआ, दिस इज नेचुरली नॉट एक्सप्लेनेबल बिकॉज ये बियॉन्ड अवर कॉम्प्रिहेंशन है, बियॉन्ड मेडिकल साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं उसके अगेंस्ट हैं। एंड दैट इज वेयर अवर साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, साइंस ऑफ मेडिटेशन एंड साइंस ऑफ हीलिंग कम्स। जब सेंट्रल कमांड, जब हमारा अपना ब्रेन, हमारा थॉट प्रोसेस सिंक्रनी में आ जाता है, अर्थात जब हम योग के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा अपने संकल्पों को कंट्रोल में लाते हैं, अपने संकल्पों को अपना मित्र बनाते हुए सेंट्रली उनको एम्पावर करते हैं, तो एक एक हमारा संकल्प बहुत पावरफुल एनर्जी हमारे ब्रेन, हमारे शरीर के एक एक सेल को देता है। दोस्तों, आप इमेजिन करिए कि आप एक किसी म्यूजिक के कॉन्सर्ट में गए हैं और उस म्यूजिक के कॉन्सर्ट में एक तबला वादक भी है, एक सितार, एक गिटार बजाने वाला है, सब लोग बहुत एक्सपर्ट हैं और एक गाने वाला भी है, लेकिन सब लोग अपनी अपनी धुन अलग अलग बजा रहे हैं, गाने वाला अपना गाना गा रहा है, सबका अलग अलग तरीका है। और जब वो ऐसा करते हैं तो क्या हमको अच्छा म्यूजिक या गाना या कोई धुन बाहर निकल कर आती है? नहीं निकल कर आती है ना। क्यों? क्योंकि उन सबके अंदर कैपेबिलिटी है, लेकिन एवरीबॉडी इज टोटली डिससिंक्रोनस, यानी वो अपने अपने तरीके से कार्य कर रहे हैं। कैपेबिलिटी हर एक में है, लेकिन उनके अंदर सिंक्रनी नहीं है, लैक ऑफ सिंक्रनी है। लेकिन जैसे ही एक व्यक्ति जो उस ऑर्केस्ट्रा को कंट्रोल करता है, एक टीचर जो उस क्लास को कंट्रोल करता है, वो जब आता है, वो उनको एक सिग्नल देता है, एक सेंट्रल कमांड देता है, वो हाथ हिलाकर बताता है कि अब आपको बजाना है, अब आपको बजाना है, तो वही म्यूजिशियंस और वो गाने वाला व्यक्ति जो है एक बहुत ही सुंदर और मधुर धुन प्रोड्यूस कर देता है, उस गाने को हम लोग एंजॉय करते हैं। इसी प्रकार हमारा शरीर भी कार्य करता है। जब हम अपने मन को सकारात्मक संकल्प देते हैं, अपने मन के बिलीफ सिस्टम को चेंज करते हैं, हम बार बार अपने आप को कहते हैं कि मैं बीमार नहीं हूं, लैक ऑफ एक्सेप्टेंस कि मैं बीमार हूं, दैट इज द फर्स्ट स्टेप टू हीलिंग। मैं अपने आप को यह कहता हूं कि मैं ठीक हूं, मैं हील हो जाऊंगा, कोई भी बीमारी मेरे शरीर के ऊपर असर नहीं डालेगी, तो वही दवाइयां भी जो हैं बहुत सुंदर और बहुत पावरफुल रूप से कार्य करती हैं। दोस्तों, अगर हम साइंस के रूप से देखें, तो जब हम पावरफुल संकल्प अपने मन में जनरेट करते हैं, एक पावरफुल पॉजिटिव संकल्प अपने पूरे शरीर को हम लोग देते हैं कि यस, आई एम गोइंग टू बी हील्ड, आई एम गोइंग टू बी परफेक्टली फाइन, नो डिजीज विल बी एबल टू अफेक्ट माई सेल, तो वॉट हैपन्स, ये संकल्प जो है ये हमारे सारे सेल्स को, जो 50 ट्रिलियन सेल्स मेरे शरीर के अंदर हैं, और एक एक सेल अपने आप में एक कंप्लीट एंटिटी है जो अपने डिसिंक्रोनस वे से कार्य कर रहा है, लेकिन जब एक सेंट्रल कमांड मेरे मन से, मेरे ब्रेन से उनको जाती है, तो वो सब सेल ऑटोमेटिकली ऑर्डर में आ जाते हैं। दे स्टार्ट बिहेविंग इन अ वेरी ब्यूटिफुल एंड अ वेरी पावरफुल हार्मोनियस वे। और जब वो हार्मनी में आते हैं, तो सारे सेल्स, 50 ट्रिलियन सेल्स की जो सारी एनर्जी है, वो इतनी पावरफुल शक्ति हमारे शरीर में जनरेट करती है, दैट द प्रोसेस ऑफ हीलिंग स्टार्ट्स हैपनिंग इन आवर लाइफ। दैट इज व्हाट वी से कि इम्यूनिटी केवल बाहर नहीं है, इम्यूनिटी केवल अच्छा खाना खाने में नहीं है, लेकिन हीलिंग और इम्यूनिटी का मेजॉरिटी पार्ट जो है वो हमारे बिलीफ सिस्टम, हमारी मान्यताओं में है। जब तक हम अपने मन को, अपने ब्रेन को पावरफुल संकल्प नहीं देंगे, हम अपने मन को सकारात्मक संकल्प नहीं देंगे, हम अपने मन को ये बिलीव नहीं कराएंगे कि मैं ठीक हूं, कोई भी बीमारी मुझे नहीं होगी, या अगर है तो मैं उसके ऊपर विजय प्राप्त पक्का करूंगा, तब तक वो हीलिंग का प्रोसेस आरंभ नहीं कर सकता है। दोस्तों, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड क्रिएटिंग अ सिंक्रनी। जब हमारे मन से एक सेंट्रल पावरफुल कमांड जाती है, हमारे लिम्बिक सिस्टम, हमारे केमिकल ब्रेन से एक पावरफुल एनर्जी जाती है, वो समझ जाता है कि ये व्यक्ति अपने आप को हील करना चाहता है, तो वो पावरफुल हॉर्मोन्स जो हैं, जो एंडोर्फिन्स हमारे ब्रेन के अंदर से रिलीज होते हैं, वो हमारे संपूर्ण शरीर को एक हार्मनी में ले आते हैं, एक हीलिंग मोड में ले आते हैं। एंड दैट इज व्हाई व्हेन वी आर कंटिन्यूअसली थिंकिंग दोज थॉट्स कि मैं ठीक हूं, आई एम फाइन, ये बिलीफ सिस्टम हमारे ब्रेन के अंदर न्यूअर कनेक्शंस जनरेट करता है। इसके ऊपर साइंस में रिसर्च भी हुई है कि 1 आवर ऑफ फोकस्ड कॉन्सेंट्रेशन एंड मेडिटेशन विल डबल द साइनेप्टिक कनेक्शंस। अगर हम नेगेटिव चीज पर और फियर पर फोकस करते हैं तो फियर के कनेक्शंस और नेगेटिव कनेक्शंस हमारे ब्रेन में 4 घंटे में डबल हो जाएंगे। इसी प्रकार जब हम पॉजिटिव एनर्जी पर फोकस करते हैं और हीलिंग पर फोकस करते हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर यही कनेक्शंस डबल हो जाएंगे। डॉक्टर एरिक कैंडल को 2000 में इसी रिसर्च पर नोबेल प्राइज मिला था, जिसमें उन्होंने कहा था कि व्हाट सिंक्स इन ब्रेन लिंक्स इन ब्रेन। अगर हम अपने ब्रेन को सिंक्रनी में ले आते हैं, पॉजिटिविटी की तरफ ले आते हैं, तो हमारे ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर्स में, हमारे ब्रेन के अंदर ऑटोमेटिकली हीलिंग एंड पॉजिटिव लिंकिंग आरंभ हो जाती है। दोस्तों, ब्रेन की इसी यूनिक प्रॉपर्टी को न्यूरो प्लास्टिसिटी कहा जाता है। जब मैंने अपने ब्रेन के स्कैन्स को रिपीट किया, फॉलोअप रिपीट किया, तो मैंने देखा कि जो ब्रेन का एरिया डैमेज भी हुआ था और जो सेरिबेलम के अंदर जो मास भी था, वो सारे लेजन्स ना केवल डिसअपियर हुए, लेकिन नॉर्मल ब्रेन ऑटोमेटिकली उधर धीरे धीरे एक्सपैंड करके उसको कवर करता चला गया। एंड दैट इज व्हाट इज द ब्यूटिफुल आर्ट एंड ब्यूटिफुल प्रॉपर्टी ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी। जब आपके अंदर से एक ब्रेन का पार्ट निकाला जाए तो अक्सर क्या होगा, कोई डिफिशियंसी आएगी या कोई पार्ट डिसफंक्शनल हो जाएगा, या कहीं ना कहीं कोई ऐसा पार्ट हो सकता है जहां पर कोई वीकनेस आ जाए। लेकिन अगर हम अपना बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग रखते हैं, हम अपने आप को समझाते हैं, तो हमारे ब्रेन के अंदर इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी पावर है, वो न्यूरोप्लास्टिसिटी के द्वारा अपने ब्रेन का स्ट्रक्चर चेंज कर सकता है, अडेप्ट कर सकता है अकॉर्डिंग टू अवर ओन विश। ये शक्ति ना केवल हमारे अंदर है, ये शक्ति हम सबके अंदर है। मेडिकल साइंस एक बहुत पावरफुल साइंस है एंड मेडिटेशन की साइंस भी एक बहुत यूनिक साइंस है। आज का ये समय है जब हम अपने शरीर, अपने मन, अपनी आत्मा, अपने बॉडी एंड अपने एनवायरमेंट के अंदर कंप्लीट सिंक्रनी क्रिएट करें। ये हमारी एक कॉस्ट्यूम है और इस कॉस्ट्यूम के अंदर हमारी कॉन्शियसनेस रहती है और हमारे चारों अराउंड हमारा एनवायरमेंट है। लेकिन कॉन्शियसनेस हमारे कॉस्ट्यूम के सेल्स को कंट्रोल करती है और हमारी कॉन्शियसनेस हमारे एनवायरमेंट को भी पावरफुल तरीके से दोस्तों इन्फ्लुएंस करती है। अगर हम अपने मन के संकल्पों को सकारात्मक बनाते हैं, अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग करते हैं, आज बहुत आवश्यक है अपनी मान्यताओं, अपनी धारणाओं, अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग करना। जब हम अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग करते हैं तो हमारी बॉडी, हमारे बॉडी के सारे हॉर्मोन्स, हमारी बॉडी के सारे जो एंडोक्राइन सिस्टम्स हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम्स हैं, दे ऑल फॉल इन प्लेस। व्हाई? बिकॉज हमारा किंग, हमारा ब्रेन, हमारा सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम हमारी आत्मा की गवर्नेंस में चल रहा है, हमारे संकल्पों की गवर्नेंस में चल रहा है। लेकिन जब हम अपने संकल्पों के गुलाम हो जाते हैं, हम अपने डर के गुलाम हो जाते हैं, हमारे जीवन में हमारे फियर हमारी लाइफ को कंट्रोल करता है, तो दोस्तों यही ऑर्गन्स हमारे जीवन में हमारी बीमारी को बढ़ा देते हैं, हैफेजर्ड हो जाते हैं, हमारा ब्रेन, हमारा हार्ट डिससिंक्रोनसली फायर करता है। क्या होगा जब आदमी घबरा जाता है तो उसका हाथ कांपता है, वो कुछ भी अपने जीवन में कंट्रोल नहीं करता। इसी प्रकार दोस्तों, जब हम अपने ब्रेन को नेगेटिव सिग्नल देते हैं तो ब्रेन भी डिससिंक्रोनस फायरिंग करता है, यानी कोई भी हार्मनी यानी कोई भी सिंक्रोनिसिटी ना अपने हार्ट के साथ, ना स्वयं के साथ, ना शरीर के किसी ऑर्गन के साथ वो क्रिएट कर सकता है। और इस रैपिड फायरिंग में कहीं ना कहीं हीलिंग का प्रोसेस डिस्ट्रॉय हो जाता है, तब हमारी ट्रीटमेंट होता है, यानी दवाइयां अपनी लिमिटेशंस में काम करती हैं। बहुत सारे लोग दवाइयों से ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन जब परिस्थितियां कठिन होती हैं, जब परिस्थितियां दवाइयों के बियॉन्ड चली जाती हैं दोस्तों, उस समय हमको याद आता है कि हम किसी न किसी महात्मा, किसी न किसी मिराकल की वेट करें। दोस्तों, मिराकल्स बाहर से क्रिएट नहीं होते, मिराकल्स क्रिएट करने की कैपेबिलिटी आज स्पिरिचुअल साइंस और मेडिकल साइंस हमारे स्वयं के अंदर देती है। ऐसे कितने ही एग्जाम्पल्स हैं, कितने ही लोग हैं जो स्वयं अपने आप को हील कर रहे हैं। आज मेडिकल साइंस ये प्रूव कर चुकी है कि केवल अपनी सोच के द्वारा, केवल अपने विचारों के द्वारा, ना केवल हम अपने शरीर का, अपने ब्रेन का स्ट्रक्चर कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं, उसको अपने अकॉर्डिंग हम लोग बना सकते हैं। दोस्तों, यही मैजिक ऑफ मेडिटेशन है। आज अगर हम कितनी कठिन परिस्थितियों से जाते हैं, कभी ना कभी कोई छोटी या बड़ी बीमारी या कोई ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है, तो बहुत जरूरी है कि हम मेडिकल साइंस का प्रॉपर तरीके से उपयोग करें, डॉक्टर को कंसल्ट करें और दवाइयों को आरंभ करें। लेकिन हम अगर उस मेडिकल साइंस को अपनी स्पिरिचुअल साइंस, अपनी मेडिटेटिव साइंस से कॉम्प्लीमेंट करते हैं, उसको हम उसके साथ इनकल्केट करते हैं, तो हमारे संकल्पों में सिंक्रोनिसिटी आने के कारण हमारे ब्रेन के न्यूरल पाथवेज कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं, और वो न्यूरल पाथवेज बार बार सोचने के कारण हमारे शरीर को कंप्लीटली अपने संयम में ले आते हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा कि ऐसे हमारे पुराने टाइम में कितने महात्मा होते थे जो कई कई महीने बिना खाने के, कई कई महीने गुफाओं के अंदर जाकर, कई कई महीने बर्फ के अंदर जाकर वो तपस्या करते थे। ऐसा कैसे संभव होता था, ये मेडिकल साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकती है। ये तभी संभव होता था जब वो अपने मन और अपने मन के संकल्पों के द्वारा अपने शरीर के कंप्लीट मेटाबॉलिक सिस्टम को अपने संयम, अपने कंट्रोल में ले आते थे। और दोस्तों, ये जो है ये कोई इंडिविजुअलिस्टिक प्रॉपर्टी नहीं है, ये एक यूनिक माइंडसेट है। ये माइंडसेट हम सब क्रिएट कर सकते हैं। ये माइंडसेट हम तब क्रिएट कर पाएंगे जब हम रोज अपने मन का ध्यान रखेंगे। यही मन का ध्यान रखना हीलिंग की तरफ, ट्रीटमेंट को हीलिंग की तरफ, पेन को, सफरिंग को अपनी लाइफ से रिमूव करने की तरफ एक बहुत बड़ा स्टेप होगा। दोस्तों, जीवन में वो पॉज लाना, वो स्पेस लाना, वो आज बहुत आवश्यक है। ये स्पेस हम सबकी एक कॉन्शियस चॉइस है, जहां एक तरफ हमको लाइफ बार बार स्टिमुलस देती है और जहां हम लोग बार बार अपनी लाइफ में रिएक्शन जनरेट करते हैं। स्टिमुलस आता है, रिएक्शन जनरेट होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग ऑटो पायलट पर चल रहे हैं। आज दोस्तों, उन दोनों के बीच में केवल एक वर्ड लाना है, वो है पॉज और स्पेस। जब हम अपने मन को रोकना सिखाते हैं, जब हम अपने मन को अच्छे संकल्प जनरेट करना सिखाते हैं, जब हम अपने मन को सकारात्मक संकल्प देते हुए स्वयं को हील करना सिखाते हैं, पॉजिटिव संकल्प देते हैं, पीसफुल संकल्प देते हैं, प्यार से परिपूर्ण संकल्प देते हैं, ये शक्तिशाली संकल्प देते हैं, प्योर संकल्प देते हैं, आनंद के संकल्प देते हैं दोस्तों, तो हमारा एक एक पॉजिटिव संकल्प हमारे कंप्लीट हार्मोनल इंबैलेंस को समाप्त कर देता है और हीलिंग की तरफ ये हमारा एक बहुत बड़ा कदम हो जाता है। मैं आपको एक स्ट्रांग रिकमेंडेशन दूंगा कि साइंस कहती है कि अगर ब्रेन में कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन लानी हो, एक न्यू कनेक्शंस को परमानेंट स्ट्रक्चर देना हो, तो कम से कम 3 हफ्ते से लेके 6 महीने तक का टाइम हमको जरूर चाहिए होता है। अगर हम पावरफुल कॉन्शियस एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, पावरफुल मेडिटेशन अपने जीवन में इनकल्केट करते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं, तो मात्र 3 हफ्ते के अंदर हम अपने ब्रेन का स्ट्रक्चर कंप्लीटली अपने अकॉर्डिंग, अपने विश के अकॉर्डिंग सिग्निफिकेंटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अपने ब्रेन के बिलीफ सिस्टम्स को, जो पुरानी मान्यताएं हैं, जिनको हम कहते हैं मैं तो इसी प्रकार का हूं, मेरी सोच इसी प्रकार की है, उसको हम कंप्लीटली समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों आइए हम अपने जीवन में मिरेकल्स क्रिएट करें। मिरेकल्स हमारे लिए कोई बाहर नहीं कर सकता, मिरेकल्स हमको अपने जीवन में स्वयं क्रिएट करने हैं। परमपिता परमात्मा के साथ केवल कुछ पल की अनुभूति, केवल कुछ क्षण का उनके साथ जब हम कनेक्शन करते हैं, तो वो पावरफुल एनर्जी हमारे मन को, हमारी आत्मा को हीलिंग मोड में ले आती है, हमारे लेफ्ट और राइट ब्रेन में कंप्लीट सिंक्रनी ले आती है। और आज मेडिकल साइंस इसको कंप्लीटली प्रूफ कर चुका है। तो डरना नहीं है, चिंता नहीं करनी है, भय नहीं करना है। लाइफ सिचुएशंस देती है, लेकिन डिसीजन हमारा अपना है कि हमको सफर करना है या हमको उस बीमारी पर विजय प्राप्त करनी है। दोस्तों लोग बोलते हैं कि हम सुपर नेचुरल बन सकते हैं क्या, लोग बोलते हैं कि क्या हम इस शरीर के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट इज बीइंग सुपर नेचुरल? मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीइंग सुपर नेचुरल इज बीइंग ग्रेटर देन दिस बॉडी। अपने शरीर के प्रति मान्यताओं, अपने शरीर से भी ऊपर उठना, अर्थात अपनी आत्मा को फोर फ्रंट में लाना, अपने जीवन का कंट्रोल अपने संकल्पों को देना, अपनी आत्मा को देना, यही सुपर नेचुरल बनना है। और ये हम तब बन पाएंगे जब रोज हम कुछ पल परमपिता परमात्मा के साथ अपने मन, अपनी आत्मा को जोड़ेंगे। तो मैं आपको केवल कुछ क्षणों के लिए एक सुंदर अभ्यास, एक सुंदर कुछ संकल्प दूंगा, और आप उन संकल्पों को रोज अपने मन को दीजिए और ऐसा अनुभव करें कि मेरा एक एक संकल्प मेरे शरीर के एक एक सेल को बहुत पावरफुल और प्योर बना रहा है। ओम शांति। मैं एक शक्तिशाली, पवित्र, आत्मा हूं, परमपिता परमात्मा से प्रेम, शांति, शक्ति, पवित्रता की पावरफुल एनर्जी मेरे शरीर और मेरी आत्मा को बहुत सुंदर शक्ति दे रही है। अनुभव करें मेरी आत्मा से एक एक संकल्प बहुत शक्तिशाली, पवित्र और पावरफुल चार्ज होकर मेरे ब्रेन और मेरे शरीर के एक एक सेल को प्योर कर रहा है, संयम मिला रहा है। कोई भी बीमारी, कोई भी नेगेटिविटी मेरे मन, मेरे ब्रेन, मेरे शरीर के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं डाल रही है। मैं शक्तिशाली हूं। परमपिता परमात्मा सुप्रीम सर्जन है, उनकी पावरफुल शक्ति मेरी आत्मा को भी शक्तिशाली बनाते हुए शरीर के एक एक सेल को शांत और शक्तिशाली बना रही है। अनुभव में खोएं, आत्मा से शक्ति, शरीर के एक एक अंग, एक एक ऑर्गन को दर्द से, कष्ट से, दुख से संपूर्ण मुक्ति दिला रही है। मैं स्वस्थ हूं, मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, मेरी आत्मा आनंद में है। ओम शांति शांति शांति।
ओम शांति यानी मैं शांत आत्मा, शांति का माहौल बनाकर आपके शांति को प्रिजर्व करना चाहते हूँ, बढ़ाना चाहते हूँ और उस शांति के माहौल में जिंदगी को जीना चाहते हैं। ये जो शांति है, सुख है, कभी सोचा आपने कि हम सब इसे पाने की इच्छा क्यों रखते हैं? क्योंकि ये एक बेसिक इमोशन है। हमारे मन की जो पावर्स हैं, हमारे मन के जो मिरेकल्स हैं और हमारे मन के अंदर छुपी जो मिस्ट्रीज हैं, वो अथाह है। एक्चुअली मन की हम बात आमतौर पे करते हैं, लेकिन मन एक सिर्फ प्रोसेस है और वो दो और चीजों को अपने साथ जोड़ता है। एक तो शरीर, जो भी मन सोच रहा है उसको आने वाली जिंदगी में या अपने आसपास की जिंदगी में मैटर के साथ कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, और दूसरे एक्सट्रीम पर है जिसे कि हम आत्मा, सोल, एनर्जी, कॉन्शियसनेस कुछ भी कह सकते हैं, जो कि एक ऐसी पावर है जो मन के प्रोसेसेस के द्वारा हमारे शरीर को चलाती है। तो ये तीनों चीजें जब सही रूप से मिश्रण होके चलती हैं तो हम कुछ चीजें एक्सपीरियंस करते हैं और वो एक्सपीरियंसेस हमें आगे एक दिशा में चलने के लिए मोटिवेट करते हैं और फिर धीरे 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 जो हमारा जिंदगी का पर्सनलाइज्ड गोल है और कहीं ना कहीं जो यूनिवर्स का हमारे लिए गोल है उसकी तरफ बढ़ते हैं। आज हम बात कर रहे हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के। यहाँ पे एक और बात कहना चाहता हूँ कि हमारे पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंसेस जो हैं वो हर किसी के अपने हैं। अगर आप एक जगह पर भी बैठे हुए हैं तो उस जगह पे अगर दो लोगों से पूछोगे कि यहाँ क्या महसूस किया, क्या देखा, क्या सुना, तो वो अलग अलग लोग अलग अलग समय पर भी अलग अलग चीजों को पिक करेंगे, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से आसपास की एनर्जीज को और आसपास के मैटर को इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो जो हमने सुना है, जो हमने जाना है, एक तरीके से वो भी हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस हो जाता है। लेकिन उसी के साथ एक और लेवल है पर्सनल एक्सपीरियंस की, जहां पे कि जो मैंने खुद महसूस किया, अनुभूति की, मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, अनुभव हैं, वो किस तरीके से मेरी जिंदगी को शेप करते हैं, और वो आमतौर पे सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग एविडेंस होती है हम में से सब किसी व्यक्ति के लिए। एज अ डॉक्टर अगर आप देखें अपने आप को, तो जो हमने किताबों में पढ़ा वो पढ़ा ठीक है, लेकिन जब तक उसको किसी पे अप्लाई नहीं किया और उसकी वजह से किसी व्यक्ति की मदद नहीं हुई या कोई बीमारी ठीक नहीं हुई, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये प्रैक्टिकली काम करता है। तो इसीलिए जब कोई एक्सपीरियंस हम महसूस करते हैं तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है और आप कह सकते हैं कि हाँ, मैंने ये एक्सपीरियंस किया, सो दिस एग्जिस्ट फॉर मी। बाकी चीजें कई बार थ्योरेटिकल लगते हैं, लेकिन जब वो प्रैक्टिकल में हो जाती हैं, देन यू रियलाइज कि वो चीज असंभव नहीं है, वो चीज ना सिर्फ प्रोबेबल है, पॉसिबल है, डुएबल है, बट रियलिटी भी है। तो आज हम थोड़ी सी जर्नी पे चलेंगे, उसमें से कुछ तो मेरी पर्सनल जर्नी है, लेकिन उसी के साथ साथ जो जर्नी इस समय मेडिकल साइंसेस की है, जो जर्नी मेंटल हेल्थ की है, और आमतौर पे आप देख रहे होंगे अपने आसपास की सडनली लोगों को समझ में आना शुरू हुआ है कि माइंड कितना इम्पोर्टेंट है, माइंड की पावर्स कितने इम्पोर्टेंट है, और अगर वो पावर्स ठीक तरह से ना चल रही हो तो इस व्यक्ति के लिए, उसके फैमिली के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए कितनी तरह की मुश्किलें पैदा कर सकती है, और किस तरह से उसकी पावर्स को कम करके जो प्रोडक्टिविटी है, जो पोटेंशियल है, जो एम्पावरमेंट होनी चाहिए वो कम हो जाती है उस व्यक्ति की भी एंड पूरी सोसाइटी की ऑफ कोर्स। और उसकी दूसरी डायमेंशन ये भी है कि वो कई बार बहुत डिस्ट्रक्टिव हो सकती है। तो जो पावर्स हैं वो आमतौर पे देखने की कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि क्या है जिनको बढ़ाने से मुझे सुख, शांति, खुशी का अनुभव होता है। और पूरी ह्यूमैनिटी, हम जो भी कर रहे हैं, चाहे लोग काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, कहीं घूमने जाते हैं, या फैमिली में जो इंटरेक्शंस हैं वो इसीलिए होते हैं ताकि हमें खुशी मिल सके, सुख मिल सके, पीस मिल सके। मैं अगर पीछे मुड़ के देखूं, और हम में से हर किसी की जर्नी तो वैसे यूनिक है, लेकिन अपनी जर्नी की आज इसलिए बात कर रहा हूं कि ये जो मैं अब आज इस समय में करीबन 30 वर्षों से राजयोग मेडिटेटिव लाइफस्टाइल के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में जानकर, थोड़ा सा पहचान कर, उनके बारे में एक्सपीरियंस करके, उनके बारे में रिसर्च करके जो खुद महसूस किया है, और कुछ हद तक अपने क्लाइंट्स के द्वारा उन जब प्रिंसिपल्स को अप्लाई करवाया है तो उन्होंने जो महसूस किया है, और जो पूरे वर्ल्ड में इस समय स्पिरिचुअलिटी और मेंटल हेल्थ की आपस में एक इंटरफेस सा चल रहा है, और जो पहले एक समय में होता था वो मैंने अपने लाइफ टाइम में ही देखा कि जब कहा जाता था कि साइंस कुछ और है, स्पिरिचुअलिटी कुछ और है, धीरे धीरे दोनों का समावेश हो रहा है, इंटरफेस हो रहा है, और वो एक दूसरे के पूरक हो रहा है। आज से करीबन 40 साल पहले मैंने मेडिकल प्रैक्टिस खत्म करके साइकेट्री की प्रैक्टिस शुरू की, और उस समय मैं देखना शुरू किया कि हम अचानक एक मेडिकल मॉडल की तरफ जा रहे हैं। तो जो कुछ एंशियंट प्रिंसिपल्स थे ऑफ लिविंग हर कल्चर में, और इंडियन कल्चर तो बहुत ही उसमें सशक्त है, भरपूर है, तो जो हमारे पुराने रहने के तरीके थे, जो प्रिंसिपल्स, गुड प्रिंसिपल्स ऑफ लिविंग थे, उनको हम धीरे धीरे भूलते जा रहे थे। और उस कारण से जिसको कि मेडिकलाइजेशन कहते हैं कि हर चीज जो है वो सिर्फ केमिकल्स है, और केमिकल्स अपने आप एक दूसरे के साथ कुछ इंटरेक्शन करते हैं और उस वजह से हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, इमोशंस होते हैं, थॉट्स चलते हैं, हम एक्ट करते हैं, देन वी स्लोली स्टार्टेड रियलाइजिंग कि एक्चुअली एक कॉन्टिन्यूम है। और उस कॉन्टिन्यूम में भी एक बहुत मिरेकुलस चीज मैं कहूंगा कि जो हमारी बॉडी है जिसके द्वारा हम काम करते हैं उसमें ही मिरेकल्स हर सेकेंड हो रहे होते हैं। हम कई बार सिर्फ जो मिरेकल्स को बाहर ढूंढते हैं वो बड़े बड़े मिरेकल्स को ढूंढते हैं, लेकिन जो रोज हमारे साथ मिरेकल्स हो रहे हैं उनको हम भूल जाते हैं। मान लीजिए 100 लोग किसी भी तरह की किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं तो जरूरी नहीं है उन 100 का आउटकम अलग होगा, हर व्यक्ति का अलग अलग आउटकम होगा, कुछ हद तक सिमिलर होगा। वी अंडरस्टैंड कि एक जो बीमारी है वो आई है, इस तरह के कुछ कुछ सिम्टम्स होंगे, हर किसी में नहीं होता, या इतने दिन तक चलेंगे, हर किसी में नहीं चलता, और इसीलिए इंडिविजुअलाइज्ड हर व्यक्ति को अपनी हीलिंग करने की जरूरत पड़ती है। मेडिकल साइंसेस उस हीलिंग के प्रोसेस को फास्ट कर सकते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट जो हीलिंग है वो हमारे अंदर होती है, हमारे शरीर में, मन के द्वारा होती है। और अगर हमारी कॉन्शियसनेस या आत्मा की पावर बहुत स्ट्रांग है तो तो वो हीलिंग भी बहुत अच्छी होती है और कई बार उसके मिराकुलर्स रिजल्ट्स निकल के आते हैं। क्यों ऐसा होता है ये अभी एक तरह से मिस्ट्री है, लेकिन उसके बारे में बहुत सारी चीजें अब हम धीरे धीरे मेडिकल साइंस में जानने भी लग गए हैं। तो आज से करीबन 40 साल पहले जब मैंने अपनी साइकेट्री की प्रैक्टिस शुरू की, उस समय में हम धीरे धीरे देखते थे कि जो तनाव थे या उदासी थी वो कम थी। लोगों में जो कुछ गुड प्रिंसिपल्स ऑफ लिविंग के अभी हम बात कर रहे हैं, जिसमें कि संतोष, कंटेंटमेंट, या दूसरे के साथ जेलसी नहीं होना, या ये समझना कि जो कुछ है वो मेरे लिए सही है और शायद किसी कारण से मेरे साथ हो रहा है, या परिवारों का आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना, या जिंदगी को बहुत फास्ट स्पीड पे नहीं चलने देना, या बहुत ज्यादा चीजों को अपनी जिंदगी में अचानक लेके नहीं आना, या सिर्फ जिसको कंज्यूमरिज्म कहते हैं, या ये समझते हैं कि हर चीज जो है वो सिर्फ पैसे से तोली जाएगी, उनमें हर इवॉल्विंग सोसाइटी में हमने देखता है कि वो चीज कम थी। और वो जैसे 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 बढ़नी शुरू होती है और माइंड के ऊपर उस चीज के प्रेशर्स आने शुरू होते हैं या हमारे संबंध कम होने शुरू होते हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं ये जो टूट रहे हैं संबंध, या जो अंदर से व्यक्ति अपने आप को, अपने इमोशंस को, थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, या उसके स्ट्रेसेस बढ़ रहे हैं, हमने खुद अपनी प्रैक्टिस में, मैंने 40 साल में देखा कि वो सारी चीजें बढ़कर जो मेंटल डिस्ट्रेस है और उसके बाद डिजीज है और वो फिर डिसऑर्डर है, वो समय के साथ साथ बढ़ते गए। और आंकड़े भी आज के समय में जो दिखा रहे हैं वो यही दिखा रहे हैं कि वो आज बहुत बढ़े हुए हैं, नॉट ओनली इन द क्लिनिकल सेंस बट सब क्लिनिकली, जिसको कहा जाता है कि कुछ सिम्टम्स हैं जो कि हमारी रोज की जिंदगी में, चाहे नींद में है, चाहे संबंधों में है, या जो काम करने की हमारी पावर है उसमें है, या जो माइंड की पावर है उसमें है, वो कम होते जा रहे हैं। हाउ डू वी रीगेन इट, किस तरीके से जो मैंने सीखा अपने लिए और दूसरों के लिए अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में, पहली चीज जो मैं आपसे समझूं कि शेयर करना चाहूंगा कि मन की पावर्स को अपने आप इंसान समझ सकता है, आई वुड से कि साइकेट्रिस्ट बनने से पहले भी बहुत ऐसी चीजें हुई, जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो लगता है कि हाँ, देयर इज एब्सोल्यूटली नथिंग इन लाइफ दैट यू कैन नॉट अचीव। ये बातें उस समय नहीं पता थी। बचपन में मैं बहुत शाई था, शाई, नाउ आई लुक बैक टू द पॉइंट ऑफ सोशल एंग्जाइटी, बहुत लोगों से मिलने का सवाल ही नहीं पैदा होता था, बहुत ऐसा लगता था कि जाऊंगा तो कुछ गलत ना बोल दूं, कहीं कुछ ऐसा ना कर दूं जिससे कि शायद लोग हंसे मुझ पर, और उसकी वजह से जो डेवलपमेंट सोशली होनी चाहिए, इमोशनली होनी चाहिए, महसूसता थी लेकिन उतनी नहीं थी। एक स्टेज पर आकर ऐसा लगा कि इसको बदलने की जरूरत है। उस समय मुझे साइकेट्री का या मेंटल हेल्थ का कुछ खुद मालूम नहीं था। उस समय में कोई टेलीविजन या टेलीविजन शुरू ही हुआ था, लेकिन आज के समय में जैसे सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, उन चीजों के बारे में तो कोई बात ही नहीं थी, किसी के मन में भी नहीं था। एंड देन आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट, देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग विद माई सेल्फ विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प, जो जो किताबें थी उनके द्वारा पढ़कर। एंड मुझे याद है एक समय आज से करीबन 45 साल पहले जब पहली बार टेलीविजन करना शुरू किया, और किसी ने मुझसे कहा टेलीविजन में कि आप लोगों को ना सोचे, आप सिर्फ एक व्यक्ति जो कैमरा में है उस पर फोकस करें, और बाकी चीजों को अगर आप भूल जाएं तो फिर आपके मन में ये जो एक डर सा है वो कम होना शुरू हो जाएगा। शायद जब सही समय आता है और उस समय में कोई चीज आपको लग जाती है, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। टेलीविजन करना शुरू किया और अचानक एक तरह से जिसको कहते हैं कि फ्लड गेट्स खुलने शुरू हो गए। आई स्टार्टेड फीलिंग मच मोर कॉन्फिडेंट, आई स्टार्टेड इंटरेक्टिंग विद पीपल, आई स्टार्टेड अचीविंग मैनी मोर थिंग्स। और शायद अब मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूं तो मुझे लगता है कि वहीं से वो बीज पड़ा कि मुझे किस तरह से अपने मन पर और जो भी स्किल्स जिंदगी में सीखूं उसके द्वारा दूसरों के मन के ऊपर काम करना। एंड आई वॉज वेरी क्लियर, हालांकि आज से 45-40 साल पहले साइकेट्री कोई इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट नहीं माना जाता था, बहुत कम लोग थे जो इसको एज अ फर्स्ट चॉइस महसूस करते थे, बट आई वॉज वेरी वेरी क्लियर थर्ड ईयर मेडिसिन ऑनवर्ड्स की मुझे साइकेट्री करनी है क्योंकि मन की पावर्स के बारे में जानना है। एंड लकीली इट हैपन लाइक दैट कि आगे की जिंदगी जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड थी वो बहुत अच्छी होने लगी। लोगों की जो मदद करने की ताकत थी उससे आपको एक तरह का हमेशा एक उत्साहन मिलता है, बिकॉज इफ पीपल गेट बेटर दे गिव यू अ गुड फीडबैक एंड देन यू कीप वर्किंग ऑन इट। और फिर साथ ही साथ मुझे याद है उसी समय में कि ऐसा लगता था कि जो हम पढ़ रहे हैं साइकेट्री में मेंटल हेल्थ से रिलेटेड वो काफी नहीं है। लोगों की मदद तो कर पा रहे थे मेडिसिन के द्वारा, कुछ साइकोलॉजिकल टेक्निक्स के द्वारा, काउंसलिंग के द्वारा, लेकिन लगता था कि कोई ऐसी डायमेंशन है जो मिसिंग है। और फिर उसकी एक खोज मैं कहूंगा होनी शुरू हुई करीबन 35 साल पहले, अलग अलग तरह की ऑर्गेनाइजेशंस में जहाँ पे कि स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बातें होती थी। एंड एज अ साइकेट्रिस्ट जो कि इंडिया में उस समय तो बहुत ही कम थे, एंड आई रिमेम्बर कि लकीली बहुत ज़्यादा मुझे उसकी वजह से जो ऑर्गेनाइजेशंस थी दे वुड वेलकम, लेकिन फिर भी ऐसा लगता था कि कुछ ना कुछ मिसिंग है। जो जीवन के सत्य हैं उनमें खोज अभी बाकी है, और किस तरह से उसको हम रोजमर्रा की जिंदगी में लगा सके उसके लिए और खोज करने की जरूरत है। और एक दिन अचानक मुझे अभी नहीं मालूम कि ये सारी चीजें किस तरीके से हों, मुझे एक इनविटेशन मिला इंडिया में रहते हुए ऑस्ट्रेलिया से। एंड आई वॉज वंडरिंग इवन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि मैं इंडिया में हूँ और एक मेडिटेशन रिट्रीट के लिए मुझे एक ऐसा एक्सपीरियंस करने के लिए मुझे बुलाया गया है, और उसमें ये था कि 7 दिन के लिए है और उसमें इंटरनेशनली बहुत अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोग होंगे। एक्चुअली हम सिर्फ 2 ही साइकेट्रिस्ट थे फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, देयर वर अबाउट 100 पीपल। और उस जर्नी में देन आई डिसाइडेड व्हाई नॉट, आफ्टर ऑल अगर एक सर्च चल रही है तो देखें कि वो सर्च कहाँ तक लेके जाती है, और कुछ नहीं तो कुछ सीख के आएंगे अपने प्रोफेशन के बारे में ही या अपने बारे में ही। और मैं पहली बार माउंट आबू पहुंचा, इट वाज एन इंटरनेशनल रिट्रीट। वहाँ पे जैसे ही उस जगह पे पहुंचा तो पहुंचते ही मेरा एक पहला एक्सपीरियंस रहा विच वाज व्हाट इज कॉल्ड एज डेजा वो, यानी मैं पहले इस जगह पर, इस स्थान पर और इस स्थिति में आ चुका हूँ। इट वॉज अ रियल एक्सपीरियंस जो आप खुद अपने अंदर महसूस करते हैं। दीज आर कॉल्ड पैरासाइकोलॉजिकल फिनोमेना। मुझे उसके बारे में खैर मालूम बहुत था लेकिन एक्सपीरियंस कभी नहीं था, एंड इट वॉज एन एक्सट्रीमली प्लेजेंट एक्सपीरियंस। और उसके बाद अगले जो 5-6 दिन थे जिनमें कि बहुत गहन एक्सपीरियंशियल जीवन के बारे में, कॉन्शियसनेस के बारे में, दिनचर्या के बारे में, पावर्स ऑफ द माइंड के बारे में, पावर्स ऑफ द सोल के बारे में, हम जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं उनके बारे में जो डिस्कशंस चले और इंटरेक्शंस हुए, with some of the most advanced, I would say, knowledgeable souls in the world. और वहां से थर्ड डे में एक और एक्सपीरियंस होना शुरू हुआ विच वॉज कि मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं अशरीरी हो रहा हूं, मैं अपने शरीर से धीरे धीरे डिटैच हो रहा हूं विदाउट लूजिंग कॉन्शियसनेस, बींग अवेयर ऑफ एवरीथिंग, बींग एक्चुअली मोर अवेयर ऑफ एवरीथिंग. ये समझ पाना कि आपके साथ कुछ हो रहा है लेकिन उस होने को महसूस करने के बावजूद भी आप पूरी तरह से ग्राउंडेड हैं, चीजें बहुत जल्दी जल्दी समझ आ रही हैं, लोगों के मन में जो बातें हैं वो समझ आ रही हैं, प्रीकॉग्निशन यानी जो पूर्वाभास जिसको कहते हैं थोड़ी देर में क्या होने वाला वो चीजें समझ में आ रही हैं. तो वो जो एक्सपीरियंसेस थे वो वेरी वेरी पावरफुल एक्सपीरियंसेस. और वहां से एक और चीज समझ में आई कि जिंदगी जीने के और भी कई तरीके हैं जो हम पांच सेंसेस के द्वारा जिंदगी जीते हैं, दे आर प्रोबेबली नॉट एनफ. इट वॉज एन एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली एक्सिलरेटिंग ब्लिसफुल पीसफुल एक्सपीरियंस. समझ नहीं पा रहा था कि इसका कारण क्या है, क्यों मेरे साथ वो एक्सपीरियंस हुआ, लेकिन अब पीछे मुड़ के देखता हूं तो ऑफकोर्स समझ आता है. वापस आया और हाँ, आई यूज टू बी टेकिंग एल्कोहल और सोशली, और कभी जैसे पार्टी थी या कोई गैदरिंग थी तो उसमें एल्कोहल लिया जाता था. और उस समय मैंने पहुंच के वापस जैसे ही एक पार्टी थी वहां गया और उसमें बियर का गिलास उठाया और जैसे ही स्मेल किया तो वॉमिटिंग होनी शुरू हो गई और वो वॉमिटिंग बहुत देर तक चलती रही और उसके बाद हेडेक्स होने शुरू हो गए. वो एक एक्सपीरियंस जो था अल्कोहल के साथ वो करीबन एक दिन तक रहा और फिर धीरे धीरे ऑफकोर्स बॉडी जो थी वो नेचुरलाइज हो गई. एंड अगेन आई कुड नॉट अंडरस्टैंड कि ये एक ही दिन में बॉडी को पूरी एवर्जन अल्कोहल से किस तरीके से. एंड देन आई रियलाइज्ड कि जब आपकी कॉन्शियसनेस एक अलग लेवल पे पहुंचती है तो जो दूसरे लेवल्स हैं जो कि उसके साथ नहीं चल सकती, दे कैन नॉट गो हैंड इन हैंड. आज करीबन 28 साल के बाद भी मैं अल्कोहल को टच नहीं कर सकता हूँ, पी नहीं सकता हूँ. हेडेक, वॉमिटिंग होनी शुरू हो जाती है बिकॉज वो जो एक एक्सपीरियंस जो होता है वो कॉन्शियसनेस कहीं भी संभाल नहीं पाती. फॉर मी इट वॉज अ वेरी पावरफुल थिंग एज नॉलेज कि जब आपके मन में कोई चेंज आता है, एक सडन शिफ्ट कॉन्शियसनेस की आती है, तो उसके बाद शरीर में ऑटोमेटिकली चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं. ये जो बॉडी माइंड सोल की कॉन्टिन्यूम की हम बात आजकल करते हैं उसमें ये क्लियर हो गया कि सोल जो है जब वो कोई चीज एक्सपीरियंस करती है तो उसके बाद माइंड और बॉडी अपने आप उसको फॉलो करता है. और जब मैं अपने आप उसको एक्सपीरियंस कर पाया तो उसके बाद अपने क्लाइंट्स को, अपने पेशेंट्स को ये कहना कि आप अगर चाहें तो अल्कोहल हो, टबैको हो, कोई और ड्रग हो, वो छोड़ सकते हैं क्योंकि वो पॉसिबल है. और कई बार वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपको क्या मालूम, मैंने देन आई कैन से कि मैं उस चीज को महसूस पर्सनली कर चुका हूं. सो दैट वॉज द बिगिनिंग एंड देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये एक नॉर्मल प्रोसेस सा होने लगा, एक पैरेलल लाइफ जिसको आप कह सकते हैं. लेकिन वो जो धीरे धीरे कन्वर्ज होनी शुरू हुई कि किस तरह से आध्यात्मिकता के प्रिंसिपल्स सिर्फ थ्योरेटिकल रूप से नहीं लेकिन प्रैक्टिकल रूप से हम अपने जीवन में अगर अपनाने लगे तो हमारे में जो बदलाव आता है मन में और जो हीलिंग में बदलाव आता है. हीलिंग तो हमारे शरीर में रोज हो रही है, 100 ट्रिलियन सेल्स हैं जो बॉडी के जो एक दूसरे के साथ लगातार इंटरेक्ट कर रहे हैं और ब्रेन के करीबन 100 बिलियन सेल्स और हर सेल के 10 से 15 हजार कनेक्शन, वो अपने आप में एक मिरेकुलस बात है. किस तरीके से वो अपने आप को बैलेंस में रख पाते हैं, लेकिन जब हम स्टेबल होते हैं, जब हम अनस्टेबल होते हैं, जब हम गड़बड़ाए होते हैं, जब हम स्ट्रेसफुल होते हैं, तो वो जो नेचुरल प्रोसेस है वो नेचुरल नहीं रहते. तो वो जो एक जर्नी है उसके बाद की, जिसमें कि किस तरह से हम इन प्रिंसिपल्स को अपने क्लाइंट्स के साथ अपनी हीलिंग में जिनको हम ट्रीट करते हैं उनको प्रैक्टिकल रूप से ये कहकर कि हाँ ये पॉसिबल है, क्योंकि आज के समय में साइंस और स्पिरिचुअलिटी जुड़ रही है और हाँ मैंने एक्सपीरियंस किया है। और फिर धीरे धीरे जब आप उसे एक्सपीरियंस करने लगते हैं तो वो राज खुलने लगते हैं, जो मिस्ट्रीज हैं वो रोजमर्रा की जिंदगी की बात हो जाती है। आप अपने आसपास वाले लोगों को सुनते हैं कि किस तरीके से किसी ने टबैको छोड़ दिया, अल्कोहल छोड़ दिया। एक जो स्टडी हमने की करीबन 1000 लोगों के साथ जिन्होंने ब्रह्मकुमारीज में राजयोग में आने के बाद जीवन में बदलाव आने के बाद कई तरह की नशीले पदार्थों को छोड़ दिया, एंड इट वॉज द सेम प्रिंसिपल कि जब आपको जिंदगी में एक और तरह का नशा मिलता है, जिंदगी जीने का एक नया ढंग मिलता है, तो आप वो चीजें जो आर्टिफिशियल हैं, वो चीजें जो बॉडी को डैमेज कर रही हैं, जो आपको आपके मन को आपकी फैमिली को काम को डैमेज कर रही हैं, उन्हें छोड़ देना आसान हो जाता है। सो यू नीड टू हैव दैट बैलेंस। और फिर धीरे धीरे जिंदगी में पिछले साल 2019 में एक और एक्सपीरियंस हुआ। अगेन सुनते थे कि जब आपकी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में, और एक्सपीरियंस तो मैंने किया ही हुआ था, जब एक शिफ्ट आती है तो कोई भी तरह की बीमारी हो वो हील हो सकती है। एंड आई हैड अ पर्सनल एक्सपीरियंस। आई वॉज डायग्नोज्ड विद अ स्टेज 4 कैंसर ऑल ओवर द बॉडी, लिम्फोमास, और वो शरीर के अलग अलग हिस्से में थे और बहुत स्पीड से फैल रहे थे। अगर कोई ये कहे कि साहब वो व्यक्ति जो कि किसी भी तरह के स्पिरिचुअल पाथ में है उसे बीमारियां नहीं होंगी, आई डोंट थिंक दैट इज ट्रू, क्योंकि शरीर के अपने तरीके हैं और जो चीज हमारे आसपास हो रही है, जो हम खा रहे हैं या जिस तरह के हमारे स्ट्रेस बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं या जिस तरह के हम माहौल में रह रहे हैं, और कई बार पर्सनल एक्सपीरियंस चैलेंज करने के लिए भी शायद बीमारियां आती हैं। बीमारियां सिर्फ मुश्किल ही नहीं लाती हैं, लेकिन उनसे निकलकर, उनसे पार होकर जो जीत पाने का और मोटिवेट होने का और अपने द्वारा दूसरों को ये बात शेयर करने का जो मौका है, वो भी मेरे ख्याल से एक बीमारी का बहुत बड़ा मैसेज है। सो जब कैंसर डायग्नोज हुआ, मैं और मेरी वाइफ, एक्चुअली डॉक्टर सुजाता वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और वो भी राजयोग की प्रैक्टिस जो है, उस राजयोगी लाइफस्टाइल की करीबन उतने ही सालों से जितना सालों से मैं हूँ। सो एज अ कपल वी प्रैक्टिस इट टुगेदर और पेशेंट्स के साथ भी उसको इस्तेमाल करते हैं। तो एक तरह से हमारे लिए ये बहुत बड़ा टेस्ट था, क्योंकि एज यू नो कि कैंसर ठीक होगा कि नहीं होगा, स्पेशली जब एडवांस स्टेज में है। मैंने डॉक्टर से पूछा कि क्या चांसेस हैं, उन्होंने कहा 3 इयर्स के लिए शायद 50-50, एंड आई सेड ये 50-50 तो नहीं, मुझे 100% चाहिए, अपने आप से कहा ऑफ कोर्स, और ये भी कि ऊपर वाले से बात करते हैं, तो खुद से और खुदा से बात करने का उस दौरान में जबकि ट्रीटमेंट चल रहा था, कीमोथेरेपी चल रही थी, मौका मिला और जिंदगी के एक्सपीरियंसेस के बारे में सोचने का और हीलिंग का मीनिंग क्या है इसके बारे में सोचने का बहुत मौका मिला। कुछ चीजें इमिजिएटली शेयर कर सकता हूँ कि डर नहीं लगा, घबराहट नहीं हुई, चीजें ठीक नहीं होंगी चाहे जो भी हो जाए, चाहे परमानेंटली नॉर्मलाइज हो जाए या किसी तरह की प्रॉब्लम रहे, जो भी है उसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग जरूर होगा। तो ये खुद से बातें बहुत रही, ना ही मेरी वाइफ डॉक्टर सुजाता इस दौरान में परेशान हुई। इट वॉज अ वेरी वेरी हम्बलिंग एंड काम एक्सपीरियंस। हम्बलिंग बिकॉज ये समझ में आया कि आप जो भी हैं, जरूरी नहीं है कि आप हर चीज से बचे रहेंगे, लेकिन जो भी हुआ है किस तरीके से आप स्टेबल रहकर अपने आप को, ऑफ कोर्स जो भी ट्रीटमेंट है उसके साथ हील कर सकते हैं, उसके साथ उन हीलिंग प्रोसेसेस को बढ़ा सकते हैं। और अगर माहौल अच्छा है, पॉजिटिव है, तो वो जो हीलिंग एनर्जीज हैं और वहाँ पे जितने भी जानने वाले लोग, क्लाइंट्स भी, पेशेंट्स भी, और जो ब्रह्म कुमारीज ऑर्गेनाइजेशंस के सीनियर्स, कुलीग्स या जो भी मेडिटेटर्स हैं, उनकी एक अथाह मदद मिली और विद इन अबाउट 3 months पॉजिटिव रिजल्ट्स आने शुरू हुए आफ्टर द कंप्लीट सेट ऑफ कीमोथेरेपीज। पूरी तरह से कैंसर डिसअपीयर्ड और आज भी 1 साल बाद भी आई एम कैंसर फ्री, पूरी तरह से जैसे पहले की जिंदगी थी वहां पहुंच चुका हूं, सिर्फ एक फर्क के साथ कि हर रोज ये याद आता है कि जिंदगी का एक मीनिंग है, जिंदगी का एक पर्पस है, और वो पर्पस को जानकर अपने लिए, अपनों के लिए, दूसरों के लिए, समाज के लिए किस तरह से प्रोसेसेस ऑफ हीलिंग को, जिनमें कि जो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं ब्रह्म कुमारीज के मेडिटेटिव राजयोगी मेडिटेटिव लाइफस्टाइल के, उनको अपनाकर हम अपने अंदर और आसपास में जो माहौल पैदा करते हैं, जो पावर्स ऑफ द माइंड को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि एक तरह से बात कही जाती है कि संपूर्ण निर्विकारे 16 कला संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम, विच मीन्स आपकी जो एक हाईएस्ट स्टेट है सोल की भी, उसकी पावर्स की भी, माइंड की भी, जिसके द्वारा वो शरीर की हीलिंग को ऑटोमेटिकली करता रहता है, अगर हम उनको ट्रिगर ऑफ कर सकते हैं और जो बेसिक टेनेट्स हैं, जैसे कि ज्ञान कहते हैं, जिसका मतलब है कि नॉलेज ऑफ हु आई एम, धारणा की यानी उसको अपने अंदर अपनाना, सेवा की वो जो आपने सीखा है उसको दूसरों के साथ शेयर करना, और एक मेडिटेटिव लाइफस्टाइल जिसमें कि आप अपने साथ भी जुड़ते हैं और जो हायर पावर है, गॉड की पावर है, उसके साथ भी जुड़ते हैं। एंड आई कैन ऑल्सो शेयर कि आज के समय में ये सिर्फ इंडिविजुअल्स तक या ब्रह्म कुमारीज तक या ऐसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस तक ही सीमित नहीं है। आई एम नाउ अ पार्ट ऑफ अ लार्ज इंटरनेशनल ग्रुप जो कि वर्ल्ड साइकेट्रिक एसोसिएशन का ग्रुप है, सेक्शन ऑन स्पिरिचुअलिटी एंड मेंटल हेल्थ चेयर हूँ आज के समय में उसका, जिसमें कि सिर्फ ये शोध चल रही है कि किस तरह से इन दोनों चीजों को समावेश किया जा सकता है, अपनाया जा सकता है। सो आने वाले समय में वी विल हैव टू बी एप्रोप्रिएटली लुकिंग एट कि क्या चीज दवाइयों के द्वारा, क्या चीज थेरेपी के द्वारा, और क्या चीज आध्यात्मिक जो प्रिंसिपल्स हैं, वेज ऑफ लिविंग हैं, सोल पावर्स हैं थ्रू द माइंड, उनको अपनाने के द्वारा हो सकती हैं। सो वी आर मूविंग टूवर्ड्स अ फ्यूचर वेयर दीज विल नॉट बी पैरेलल स्ट्रीम्स बट दे विल बी मूविंग टुगेदर। और मैं अपने आप को एक तरह से बहुत लकी भी समझता हूँ, शुक्रिया भी करता हूँ ऊपर वाले का भी और ब्रह्म कुमारीज का भी कि इन सब एक्सपीरियंसेस की वजह से, जो जिंदगी के पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जो कि क्लाइंट्स के साथ भी शेयर होते हैं, उनकी वजह से आज हम कैसे एक नए संसार को, एक नए रूप ऑफ हीलिंग को अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं, और उसके लिए वही एक बेसिक फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ओम शांति, विच मीन्स मैं एक शांत आत्मा, आप एक शांत आत्मा के साथ कनेक्शन बनाकर एक शांति के माहौल में पूरे विश्व में शांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और जरूर उस कोशिश में जब सब मिलेंगे तो हीलिंग भी होगी, हेल्थ भी होगी, हैप्पीनेस भी होगी और पीस भी होगी। ओम शांति।
ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज एवं मेडिकल विंग, राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन RERF आपके लिए लेकर आए हैं राजयोग मेडिटेशन कोर्स आइए इस अंतर मन की यात्रा में हमारे साथ जुड़ें। राजयोग मेडिटेशन कोर्स का आगामी सत्र सोमवार से गुरुवार, मंडे से थर्सडे शाम 7 बजे से 8 बजे तक मेडिकल विंग के फेसबुक पेज facebook.com/medicalwinghq/live व मेडिकल विंग के यूट्यूब चैनल youtube.com/bkmedicalwing/live। ध्यान रहे, इसका ऑनलाइन लाइव प्रसारण होगा। व्हाट्सएप 861-993-7031।